ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 6 अध्याय 4 श्लोक संख्या 31। यशक्तयो वदतां वादिनां वै विवाद संवाद भवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहम् तस्मै नमो अनंत गुणाय भूमने। इसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यत् शक्तयः, जिसकी नाना शक्तियां, वदताम, विभिन्न दर्शनों को बताने वाली, वादिनाम, वक्ताओं के, वही निस्संदेह, विवाद तर्क का, संवाद तथा रजामंदी विचार ऐक्य, भव कारण, भवन्ति हैं, कुर्वन्ति उत्पन्न करते हैं, च तथा, एषाम उनके, सिद्धांतवादियों के, मुहुः निरंतर, आत्ममोहम आत्मा के अस्तित्व के विषय में मोह, तस्मै उसको, नमः मेरा सादर नमस्कार, अनंत असीम, गुणाय दिव्य गुण वाले, भूमने सर्वव्यापक प्रभु। इसका अनुवाद सुनिए। मैं उन सर्वव्यापक भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो अनंत दिव्य गुणों से युक्त हैं। वे विभिन्न मतों का प्रसार करने वाले समस्त दार्शनिकों के हृदय के भीतर से कार्य करते हुए उनसे उनकी ही आत्मा को भुलवाते हैं। कभी उनमें परस्पर मतैक्य कराते हैं तो कभी मत भिन्नता कराते हैं। इस तरह वे इस भौतिक जगत में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें वे किसी भी दार्शनिक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। इसका तात्पर्य सुनिए। अनादि काल से अथवा विराट जगत की सृष्टि काल से बद्धात्माओं ने दार्शनिक चिंतन के विविध वर्ग बना रखे हैं, किंतु भक्तों के साथ ऐसा नहीं है। अभक्तों में सृष्टि पालन तथा संगार के विषय में भिन्न भिन्न विचार हैं, अतएव वे वादी तथा प्रतिवादी कहलाते हैं। महाभारत के कथन से ज्ञात होता है कि मुनि या चिंतक अनेक हैं। तर्क अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासा वृदृश्यस्य मतम न भिन्नम। सारे चिंतकों में मतभेद होना आवश्यक है, अन्यथा परम कारण को सुनिश्चित करने वाले इतने विरोधी वर्ग क्यों होते। दर्शन का अर्थ है परम कारण की खोज। वेदांत सूत्र ने अत्यंत तार्किक बात कही है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा मानव जीवन परम कारण को समझने के लिए मिला है। भक्तजन स्वीकार करते हैं कि परम कारण कृष्ण है, क्योंकि इस निष्कर्ष का समर्थन समस्त वैदिक वाङ्मय द्वारा तथा स्वयं श्री कृष्ण द्वारा भी किया गया है, जो यह कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं हर वस्तु का स्रोत हूँ। भक्तों को हर वस्तु के चरम कारण को समझने में कोई समस्या नहीं उठती, किंतु अभक्तों को अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो भी प्रमुख दार्शनिक बनना चाहता है वह अपना मार्ग खोजता है। भारत में दार्शनिकों के अनेक वर्ग हैं, यथा द्वैतवादी, अद्वैतवादी, वैशेषिक, मीमांसक, मायावादी तथा स्वभाववादी। इनमें से हर एक अन्यों का विरोध करता है। इसी तरह पाश्चात्य देशों में भी अनेक दार्शनिक हैं जो सृष्टि, जीवन, पालन तथा संहार के विषय में विभिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। अतः यह असंदिग्ध तथ्य है कि सारे विश्व में असंख्य दार्शनिक हैं जिनमें से हर एक दूसरे का खंडन करता है। अब कोई यह पूछ सकता है कि जब दर्शन का लक्ष्य एक है तो फिर इतने सारे दार्शनिक क्यों? निस्संदेह परम कारण तो एक ही है, परब्रह्म। जैसा कि भगवद गीता 10:12 में अर्जुन ने कृष्ण से कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा सर्वव्यापी सौंदर्य हैं। किंतु अभक्त चिंतक एक परम कारण को, सर्व कारण कारणम को स्वीकार नहीं करते। चूँकि वे आत्मा तथा उसके कार्यों से अनजान हैं तथा विमोहित रहते हैं, यद्यपि उनमें से कुछ को आत्मा विषयक अस्पष्ट विचार होता है, किंतु अनेक विवाद उठ खड़े होते हैं और दार्शनिक चिंतक मीमांसक कभी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। ये सारे चिंतक भगवान से ईर्ष्या करते हैं और जैसा कि भगवद गीता 16:19-20 में कृष्ण कहते हैं, तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्र मम शुभान आसुरिष्वेव योनिषु आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम पाप्रेव कौन्तेय ततो यान्ति धमाम गतिम। जो लोग ईर्ष्यालु तथा अनिष्टकारक हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर भवसागर में विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुँच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अधमतम गति में डूब जाते हैं। भगवान के प्रति ईर्ष्या करने से अभक्तगण जन्म जन्मांतर आसुरी परिवारों में उत्पन्न होते हैं। वे महान अपराधी हैं और उनके अपराधों के ही कारण भगवान उन्हें सदा मोहग्रस्त बनाए रखते हैं। कुर्वन्ति चैषां मोहरात् मोहम, भगवान उन्हें जानकर अंधकार में रखते हैं। व्यासदेव के पिता परम विद्वान पराशर ने भगवान की व्याख्या इस प्रकार की है, ज्ञान शक्ति बलेश्वर्य वीर तेजांश शेषता भगवत शब्दवाच्यानि विना हेयर गुणादि। आसुरी चिंतक भगवान के दिव्य गुणों, रूप, लीलाओं, बल, ज्ञान तथा ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सभी भौतिक कलमश से रहित हैं। बिना हेयर गुणादि भी ये चिंतक भगवान के अस्तित्व से ईर्ष्या करते हैं। जगदाहुरनीश्वरम, उनका निष्कर्ष यह है कि संपूर्ण विराट जगत का कोई नियंता नहीं है, बल्कि यह स्वाभाविक रूप से कार्यशील है। इस तरह वे जन्म जन्मांतर निरंतर अंधकार में रखे जाते हैं और वे सभी कारणों के असली कारण को नहीं समझ सकते। दार्शनिक चिंतन के अनेक पंथों के होने का यही कारण है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्री उत्पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। छठे स्कंद का यह चतुर्थ अध्याय जिसमें 23वें श्लोक से प्रारंभ होकर और 34वें श्लोक तक हंस गुह्य नामक स्तुति दक्ष प्रजापति के द्वारा भगवान के समक्ष की जा रही है और ये स्तुति वास्तव में बहुत गंभीर है। बहुत सारे तत्वों का विवेचन एक एक श्लोक के माध्यम से दक्ष प्रजापति भगवान के समक्ष करेंगे। देखिए श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी स्तुतियों का वर्णन हुआ है और ये जितनी भी स्तुतियां हैं ये सब बहुत गंभीर हैं, क्योंकि भक्तों के भाव उनके मानस पटल पर जो अनुभव भगवान का भजन करने से प्रकट हुए हैं वही शब्दों में स्तुतियों के रूप में श्री भगवान के सामने उन्होंने अपनी वाणी से प्रकट किए। ऐसे ही चतुर्थ स्कंद में देखेंगे एक स्तुति है बहुत सुंदर जो कि भगवान शिव ने जो उपदेश दिया है प्रचेताओं को उस स्तुति का नाम है योगादेश स्तुति। और यहाँ पर छठे स्कंद के अंदर जो दक्ष प्रजापति श्री भगवान के समक्ष अपने उद्गारों को प्रकट कर रहे हैं इनको कहते हैं हंस गुह्य स्तुति। ये स्तुतियाँ भगवान के स्वरूप को और उनकी शक्तियों को प्रकट करती हैं और बहुत ही गंभीर हैं, इसलिए उनको बहुत सावधानी के साथ समझने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है जीव को तो अंधकार में मार्ग टटोलने के लिए नहीं है, बहुत सूझबूझ के साथ भगवान की जो आज्ञाएं हैं उनका पालन करते हुए अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। प्रवृत्ति धर्म में व्यक्ति हो चाहे निवृत्ति धर्म में हो, दोनों धर्मों में स्थित रहकर जिस प्रकार की भगवान की आज्ञाएं शास्त्र विहित दी गई हैं उनके अनुसार अपने जीवन को जीकर व्यक्ति को अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार से दक्ष प्रजापति ने जब मानस सृष्टि की, जीवों की सृष्टि की, स्थल पर प्राणियों की स्थिति सृष्टि की, तो जो सृष्टि है वो बढ़ नहीं रही है आगे, वो कार्य जो है वहीं पर स्थित हो गया है। तो दक्ष प्रजापति के मन में आई बात कि हमें जो कार्य सौंपा गया सृष्टि की वृद्धि करने का ये कार्य तो संभव नहीं हो रहा है, तो उनके मन में ये बात आई कि अब हम भगवान की तपस्या करेंगे, उनकी आराधना करेंगे और उस आराधना से हमें जब शक्ति प्राप्त होगी उस शक्ति के बल पर फिर हम इस सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। इसी कार्य में आगे प्रभृति दक्ष प्रजापति ये संकल्प करके विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में चले गए जहाँ पर एक अघमर्षण नाम का तीर्थ है और उस अघमर्षण तीर्थ में बैठकर उन्होंने ये तपस्या की है। तपस्या के फलस्वरूप ये 23 से लेकर 34 तक जितने भी श्लोक हैं ये सारी तपस्याओं के फलस्वरूप उनके भाव जो हैं वो उद्गार हैं जिनको उन्होंने भगवान के समक्ष प्रकट किया है। अब तात्पर्य देखें, आज का विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है क्योंकि तत्व की विवेचना ज़्यादा की गई है यहाँ पर, मीमांसकों की, अद्वैतवादियों की, द्वैतवादियों की, स्वभाववादियों की। ये जो तत्व है ना इसको समझने में ज़्यादातर ऐसा होता है कि आलस्य आ जाता है। तत्व वस्तु ऐसी है, थोड़ा गंभीर वस्तु है, इसलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। लीला श्रवण तो बहुत आनंदमयी है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गति होती है, एक्टिविटी हो रही है कि कृष्ण ये कर रहे हैं और राधा रानी ये कर रही हैं, तो समझ में आ रही है बात। परंतु तत्व तो एकदम ऐसे है जैसे निश्चेष्ट वस्तु पड़ी है, हमें पढ़ना है और उसको अपने अंदर समझना है उसको। तो थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है आज का, फिर भी यथा योग्य मैं प्रयास करूँगा समझाने का कि क्या बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर, बड़ा तात्पर्य है बहुत, इसमें लिख रहे हैं कि तत्व को समझने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं अपना पक्ष और अपना विपक्ष जो है वो सामने प्रस्तुत करते हैं, और हम समझते हैं कि जब से सृष्टि ये बनी है तब से ही ये झगड़े चले आ रहे हैं भगवान के बारे में, तब से ही चले आ रहे हैं कि कोई कहता है कि द्वैत, भगवान में द्वैत है, कोई कहता है अद्वैत है, कोई कहता है कि भगवान साकार हैं, कोई कहता है निराकार हैं, कोई कहता है निर्गुण हैं, कोई कहता है सगुण हैं। ये झगड़ा तब से चला आ रहा है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा इस चीज़ को कि वास्तविकता में भगवान का जो तत्व है वैसे तो एकदम फटिक मणि की तरह बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल क्लियर है, और इसमें बाल के बराबर भी इधर उधर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। परंतु जो बहुत मीमांसक हैं, जो बहुत तर्क इत्यादि करते हैं, वो वास्तविकता में भगवान के तत्व को ठीक से समझ नहीं पाते। उसका कारण ये है, दक्ष प्रजापति अपनी स्तुति में कह रहे हैं कि ये सारे के सारे भगवान की माया के द्वारा मोहित होने के कारण मेरे वास्तविक तत्व को नहीं समझ पाते। लेकिन तत्व समझने के लिए क्या करना होगा? तत्व समझने का तरीका है कि व्यक्ति को गुरुपाद आश्रय लेना चाहिए, परंपरा में रहना चाहिए, तब जाके व्यक्ति को तत्व समझ में आता है। अपनी मर्जी से कुछ भी बोलेगा तो समझ में नहीं आ सकता है। एवं परंपरा प्राप्तिम इमम राज ऋषयो विदुः। और श्रीधर स्वामी ने टीका में भी यही बात लिखी है कि तत्व को अगर कोई व्यक्ति समझना चाहता है तो उसको वास्तविकता में परंपरा में आना पड़ेगा। कोई व्यक्ति परंपरा से अगर सीख रहा है, गुरु की सेवा कर रहा है और फिर प्रश्न कर रहा है भगवान के बारे में, तो निश्चित रूप से सेवा करते करते आज्ञा के कारण, आज्ञा से, तो फिर उसको ये तत्व समझ में आएगा। परंतु जितने ये अद्वैतवादी हैं, जितने ये मीमांसक हैं, ये इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और भगवान की माया शक्ति तो इतनी प्रचंड है कि जो ये मीमांसक और अद्वैतवादी हैं ये हट करके बैठे रहते हैं कि हमने जो मत माना है वास्तविकता में वही सत्य है। और प्रचंड माया शक्ति के कारण उनका जो ज्ञान है वो इसी बात पे ही टिका रहता है कि हमने जो विवेचना की है तत्व के बारे में यही वास्तविकता में सत्य है, और इस पर अड़ के बैठ जाते हैं। ये है भगवान की माया का कार्य करना। व्यक्ति है झूठ के अंदर परंतु अपने आप को सत्य माने बैठा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, और इस कारण से अपना इतना समय ये लोग निकाल देते हैं सिर्फ ये विवेचना कर करके कि उनके पल्ले अंत में कुछ पड़ता नहीं है। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति प्राप्त करना, भगवान का चरण कमल प्राप्त करना, वो तो बहुत दूर की बात है। वो तत्व को भी नहीं समझ पाते ठीक से कि दिया क्या हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताएं, इस पर इतना विवाद हो जाता है, चर्चा हो जाती है, बहस हो जाती है कि एक तो अहंकार की वृद्धि बहुत होती है और अंत में जाके क्या होता है, बहुत झगड़ा भी हो जाता है जाके। आपने देखा होगा खूब, दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं और भगवत तत्व के बारे में तो किसी से भी पूछ लो हर कोई अपना मत देने लग जाता है। आप बाहर एक ऑटो वाले से पूछोगे वो भी बोल देगा भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। किसी बहुत ऊंचे व्यक्ति से बोलोगे वो भी बताना शुरू कर देगा। तो ये तत्व है ही ऐसा कि हर कोई अपना मत देना शुरू करता है। उदाहरण के तौर पे आपको बताएं झगड़ा कहाँ पर हुआ है, और ये शुरुआत में श्रीमद् भागवतम के अंदर ही है, प्रथम स्कंद में जहाँ पर मंगलाचरण है, जन्माद्यस्य चतुर्वयात इतरतश्चर्थेषु अभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो मृषाम धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ये मंगलाचरण है जो कि किया गया है। अब इस मंगलाचरण में देखिए श्रीमद् भागवतम का प्रतिपाद्य विषय क्या है, श्री कृष्ण वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण का, और परीक्षित महाराज के द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं वो सभी श्री कृष्ण संबंधित हैं, सबको ये बात ज्ञात है। तब प्रश्न यहाँ पर ये उठा, झगड़ा देखिए कहाँ पर आ रहा है, प्रश्न ये उठा कि अगर श्री कृष्ण ही प्रतिपाद्य विषय हैं श्रीमद् भागवतम के, तो व्यास देव ने मंगलाचरण की अंतिम लाइन में ये क्यों लिखा सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि की जगह सत्य की जगह कृष्णम परम धीमहि भी लिख सकते थे, कि कोई छंद भी भंग नहीं होता और अर्थ भी कोई भंग नहीं होता, परंतु सत्यम परम धीमहि लिख के इतना बड़ा एक प्रश्न खड़ा कर दिया उन्होंने कि जो ये मीमांसक और ये जितने भी ये बहस करने वाले हैं इनको मौका मिल गया। श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका लिखी है भावार्थ दीपिका, जिसमें उन्होंने पूरे श्रीमद् भागवतम का इतना सुंदर प्रतिपादन किया है अपने भावों के रूप में, तो लोगों को जो मौका मिला है इस झगड़े को बढ़ाने का वो कैसे है, श्रीधर स्वामी की टीका के ऊपर एक टीका और लिखी गई है। आप आश्चर्य करेंगे इस बात को, टीका के ऊपर टीका लिखना बहुत बड़ी बात होती है। सनातन गोस्वामी पाद ने टीका लिखी है, श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी है, और विश्वनाथ चतुर्थी पाद ने टीका लिखी है, सबने टीका लिखी है, परंतु ऐसे भी कुछ मीमांसक और ऐसे भी कुछ दार्शनिक हो गए हैं जिनको ये मौका मिला है इस झगड़े को बढ़ाने का। तो टीका के ऊपर एक और टीका लिखी है पंडित बंसीधर ने, और आप आश्चर्य करेंगे जो पहला ही श्लोक है ना जन्मादियस्य तुन्वयात इतरतश अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट, इस श्लोक के उन्होंने 100 अर्थ किए हैं, इसी एक श्लोक के 100 अर्थ कर दिए उन्होंने। विष्णु परक अर्थ कर दिया, शिव परक अर्थ कर दिया, ब्रह्म परक अर्थ कर दिया, देवी परक अर्थ कर दिया, दुर्गा परक अर्थ कर दिया, क्योंकि शब्द कामधेनव, शब्द तो कामधेनु है, जैसे चाहे वैसे व्युत्पत्ति के रूप में और समास के बल पर कैसे भी आप शब्द का अर्थ निकाल लो। तो इतना मौका मिल चुका है लोगों को कि भगवान का जो सही तत्व है उसको ठीक ठीक समझने की बजाय कॉन्ट्रोवर्सी और बढ़ा दी जाए। और सत्यम परम धीमहि लिखा व्यासदेव ने, वास्तविकता में व्यासदेव का जो अभिप्राय है सत्यम परम धीमहि लिखने का वो ये है कि व्यासदेव हमें पहली बात तो एक अपराध से बचाना चाहते हैं, हाँ, और वास्तविकता में जो प्रतिपाद्य विषय श्री कृष्ण है उनको स्थापित भी करना चाहते हैं परम सत्य के रूप में। अपराध से कैसे बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी मीमांसक और ऐसे दार्शनिक हो गए हैं जो श्री भगवान के सगुण साकार रूप को इस जगत में मिथ्या मानने पर तरु हो गए। शंकराचार्य मत यही है ना कि भगवान जब इस जगत के अंदर अवतरित होते हैं तो कैसे भौतिक स्वरूप में अवतरित होते हैं, उनका जो स्वरूप है, ये जो देह जो है वो इन पंच तत्वों से बना हुआ है, ये शंकराचार्य का मत है ना, जिसको हम मायावाद कहते हैं। तो ऐसे मीमांसक बहुत हो गए, तो व्यासदेव चाहते हैं कि मैं पूरी तरीके से इस बात को स्थापित कर दूं कि भगवान का स्वरूप चलो मान लो कि इस जगत के जितने जीव हैं उनके नाम रूप इत्यादि तो मिथ्या हो सकते हैं, परंतु भगवान के जो कि अवतरित होते हैं इस जगत में उनके नाम और रूप कभी भी मिथ्या हो नहीं सकते हैं। इस बात को समझने के लिए कि सत्यम परम धीमहि क्यों लिखा है और सत्य का प्रतिपादन केवल कृष्ण को ही स्थापित करने के लिए किया गया है, जीव गोस्वामी ने इसके ऊपर बोला है कि आपको इस सत्य शब्द को समझने के लिए प्रारंभिक मंगलाचरण जो कि जन्मादेयस्य तोन्वयात है और भागवतम का अंतिम मंगलाचरण जिसमें कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया है और मध्य का जो मंगलाचरण है, तीनों मंगलाचरणों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात समझ में आएगी कि वास्तविकता में सत्य जो शब्द है इसका प्रतिपाद्य विषय केवल और केवल कृष्ण है और कोई नहीं। अब जो मध्य का मंगलाचरण है, गर्भस्तुति का मंगलाचरण जो है उसको मध्य का मंगलाचरण कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम त्रिनेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। इस श्लोक के अंदर 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग है और ये हर कोई व्यक्ति जानता है कि गर्भस्तुति में ब्रह्मा इत्यादि जितने भी देवता हैं वो देवकी के गर्भस्थ किसकी स्तुति कर रहे हैं? श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं ना। तो इस बात से स्थापित हो रहा है कि जो व्यासदेव ने जो सत्य शब्द का प्रयोग किया है शुरुआत में, मध्य में और अंत में, और केवल किसके लिए? श्री कृष्ण को ही प्रतिपाद्य विषय इस ग्रंथ को स्थापित करने के लिए किया। मीमांसकों की बुद्धि में यह बात आती नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की माया इतनी प्रचंड है कि उनको इसी चक्कर में घुमा के रखती है कि वो सगुण है कि निर्गुण है, कि निराकार है कि साकार है। भक्तों के साथ ऐसा है। वास्तविकता में आज का जो ये तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है, ये दिया है संसारी लोगों के लिए कि भक्तों को तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हाँ भगवान का स्वरूप है और वो सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु इस बात को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, इस झगड़े को समाप्त करने के लिए कि साकार है कि निराकार है, निर्गुण है कि सगुण है, सविशेष है कि निर्विशेष है, इस पर थोड़ी सी चर्चा की आवश्यकता है। जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि भगवान का स्वरूप निराकार है, उसका अर्थ क्या है? या फिर जो कहते हैं कि साकार है उसका अर्थ क्या है? निराकार का अर्थ जानते हैं क्या होता है? ये जन सामान्य मत है कि जिसका कोई आकार नहीं है ना। भक्त लोग भी ऐसे ही मानते हैं क्या? जिनका कोई आकार नहीं है वो निराकार है, हा? वास्तविकता में इसका ये अर्थ है, निराकार का अर्थ है जिसका कोई भौतिक आकार नहीं। ये पंच महाभूत से बना हुआ जो तत्व, जो शरीर है, श्री कृष्ण का आकार इन पंच महाभूतों से नहीं बना हुआ है, इसलिए उनको निराकार कहते हैं। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्व जो है जो भौतिक माने गए हैं, इनसे श्री कृष्ण का ये देह नहीं बना है, इसलिए उनको निराकार कहते हैं। अब साकार क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका स्वरूप है इसलिए साकार है ना। नहीं, समझने वाली बात है, ये थोड़ा क्लिष्ट है चीज समझने के लिए। साकार कहते हैं क्योंकि उनका स्वरूप सत चित और आनंद से बना हुआ है, इसलिए उनको साकार कहते हैं। ये क्लियर हो गई बात बिल्कुल। निराकार क्यों कहते हैं? क्योंकि पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार से नहीं बनाए, और साकार इसलिए कहते हैं क्योंकि सच्चिदानंदमयी है। अच्छा, इसको साइड में रखते हैं। निर्गुण क्यों कहते हैं? हाँ, जो भौतिक गुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये ठाकुर जी के अंदर नहीं है, इसलिए उनको निर्गुण कहते हैं। अब सगुण क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्त वात्सल्य, भक्त माधुर्य, वेणु माधुरी, ये जितने भी अचिंत्य और आध्यात्मिक गुण हैं, इनसे भगवान, भगवान के अंदर ये सारे गुण हैं, इसलिए उनको सगुण कहते हैं। ऐसे ही निर्विशेष और सविशेष की बात है जो कि निराकार और साकार से सिद्ध हो जाती है। ये झगड़ा इतना पुराना है कि आज तक सुलझ नहीं पाया है, और देखने में आता है कि भक्तों को भी इस बात में जो है संशय रहता है कि भैया निराकार है ना साकार है, क्या है, समझ में आती नहीं है बात। हालांकि ठाकुर जी ने 12वें अध्याय के अंदर इस बात को स्पष्ट किया है कि साकार स्वरूप मेरा जो है वो श्रेष्ठ है निराकार से, परंतु यहाँ श्रेष्ठता की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि साकार है कि निराकार है। और वास्तविकता में देखा जाए तो ठाकुर जी दोनों ही हैं, निराकार भी हैं और साकार भी हैं। श्रेष्ठता साकार की इसलिए है क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो इस प्रकार का है कि प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने जब तक ना आए तब तक हमें विश्वास कम होता है थोड़ा। और वैसे भी आप अगर मान लीजिए कोई चलचित्र देख रहे हो और उसमें जो भी दिखाया जाए वो मानस पटल के ऊपर जल्दी छपता है, बजाय इसके कि आपने कुछ पढ़ा हो या सुना हो। समझ पा रहे हैं बात को? इसलिए साकार की श्रेष्ठता इसलिए बताई गई है। अब मीमांसकों की बात करें, दार्शनिकों की बात करें, इनके ऊपर इतना माया का पर्दा पड़ा रहता है कि ये कितना भी तत्व विवेचन कर लें, कितनी भी बहस कर लें बैठकर, परंतु इनकी बात ये समझ में आती नहीं है कि वास्तविकता में भगवान का स्वरूप है कैसा या फिर क्या तत्व है। क्यों नहीं समझ में आता है? उदाहरण के रूप में समझिए, आपने जादूगर देखा है? जादूगर बहुत अच्छा खेल दिखाता है। आजकल तो बड़ी विडंबना हो गई है कि वृंदावन के अंदर भी जादू दिखाए जाने लग रहे हैं। कृष्ण लीला स्थली है, यहाँ पर रासलीला तो बंद होती जा रही है और जादूगर का खेल शुरू होता जा रहा है। तो जादूगर जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं अपनी अपनी कला का, और ऐसा मोहित कर लेते हैं दर्शकों को कि दर्शक जो उनकी जो ट्रिक जो है जादू की समझ नहीं पाते, सब के सब मोहित हो जाते हैं। इसी तरीके से ये हैं, जितने भी दर्शक ऐसे समझ लीजिए जैसे मीमांसक हैं या अद्वैतवादी हैं, स्वभाववादी हैं, ये सारे दर्शक हैं और ठाकुर जी अपना जादू दिखा रहे हैं, सारे के सारे मोहित हैं। अब अंतर देखिए भक्त में और इनमें क्या अंतर है कि भक्त मोहित क्यों नहीं होता और ये सारे के सारे मोहित क्यों हो जाते हैं? वो जो ट्रिक खेलता है जादूगर वो सबको समझ में क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि उसने एक तो बहुत प्रैक्टिस की हुई है, हर किसी को समझ में नहीं आ रही है। परंतु आपने देखा होगा आजकल के ज़माने में, पता नहीं है कि नहीं, पुराने ज़मानों में देखा होगा जादूगर के साथ ना एक जमूरा होता था, सुना है ना आपने जमूरे का, जमूरे ऐसा कर, जमूरे ऐसा कर, दो करता था साथ के साथ। आप देखोगे वो जमूरा मोहित नहीं होता कभी जादूगर की सारे खेल से, होता है मोहित? क्यों? क्योंकि उसको वो जो ट्रिक है वो सारी पता है उसको कि कहाँ ये क्या खेलने वाला है, जिसकी वजह से सारे लोग मोहित हो जाएंगे। तो भक्त जो है वास्तविकता में ठाकुर जी के जमूरे हैं, समझे बात? ठाकुर जी के जमूरे हैं सारे के सारे। तो भक्तों को पता है कि ठाकुर जी कहाँ कैसे खेलते हैं, इसलिए भक्त लोग मोहित नहीं होते। और सारे के सारे भौतिक संसारी जो हैं और जितने ये दार्शनिक हैं, मीमांसक हैं, अद्वैतवादी, ये सब के सब मोहित ही रहते हैं हमेशा। तो हमारा कर्तव्य ये है कि पूर्ण रूपेण शरणागति के साथ ठाकुर जी के जमूरे बने रहो, चुपचाप बने रहोगे तो मम माया दुलत्तया, आग्रह पूर्वक कह रहे हैं हम, दुरत्तया नहीं दुलत्तया। तो ये माया है, उसके बाद फिर दुलत्ती मारती है, फिर जैसे गधा है ना, देखा है आपने, पीछे खड़े हो उसके आप तो अच्छा प्रसाद मिलेगा आपको दोनों दुलत्तियों का। तो ऐसे ही है, तो ये जितने भी हैं इनको खाने का आदत हो जाती है और दुलत्ती खाते हैं हमेशा। और दूसरी बात समझने की, इतना प्रयास करके, इतना चर्चा करके, इतनी बहस करके वास्तविकता में होता क्या है? एक तो ये अपने मत को सुदृढ़ और प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, और दूसरी बात क्या होती है, इनका अहंकार और बढ़ जाता है। और कई बार तो अहंकार ऐसा बढ़ जाता है, अभिमान ऐसा बढ़ जाता है, व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता, बिल्कुल किसी दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। एक बार क्या हुआ, काशी के अंदर एक बहुत बड़ी सभा लगी, तो उसमें एक अच्छे एक व्यक्ति गए, तो वहां से जब लौट कर आए तो उनके मित्र ने उनसे पूछा कि भैया कैसी रही सभा बताओ। बोले अरे बड़े बड़े विद्वान आए थे वहां पर, कोई हमें नहीं हरा पाया, कोई हमें हरा नहीं पाया। बोले ऐसे कैसे? बोले बस इतना प्रयास किया हमारे हमें हराने का, परंतु कोई हरा नहीं पाया। बोले कैसे नहीं हरा पाया? बोले हमने किसी की मानी नहीं। अब तुम मानो ही ना किसी की, तो फिर किस प्रकार से तुम्हें कोई हरा सकता है? कोई सोया हो तो उसको उठाया जाए, उन्होंने नाटक कर रहा हो सोने का तो उसको उठा लोगे? आप नहीं उठा पाओगे। अभिमान ऐसा है, फिर लोग तर्क करते हैं। कई बार तो भागवत कथाओं में ऐसी सुनने को मिला है, तर्क ऐसे करेंगे लोगों के अभिमान के अनुसार। देखो महाराज जी ये बताइए प्रश्न, वो गणेश जी का सिर काटा शंकर जी ने, वो कहां गिरा जाके बताओ? अरे महाराज सोचने वाली बात है, अगर तुम्हें पता भी लग गया वो कहां गिरा जाके, तुम्हें क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? है सुदामा जी के पिता को नाम क्या था? अब बड़े गर्व से उसके हमें पता है, हम बताते हैं आपको, आपको नहीं। अभी आप कच्चे वक्ता हो, अभी पूरी तरीके से पता नहीं है आपको बात। ये अभिमान है, इतना अभिमान। एक बार क्या हुआ, एक साधु थे फक्कड़, किसी घर में रोज भिक्षा मांगने जाते थे। तो घर में सास बहू दो थी, तो सास कह देती कि बाबा जाओ कुछ नहीं आज, चले जाओ, रोज आ जाते हो मांगने के लिए। तो एक दिन सास किसी काम से बाहर गई हुई थी, तो बहू थी घर पे, तो बाबा आए भिक्षा मांगने के लिए, तो बहू ने भी कह दिया कि बाबा जाओ कुछ है नहीं आज, रोज तुम आ जाते हो मांगने के लिए। तो बाबा चले गए, तो जब जा रहे तो बीच में वो सास मिली, बोले बाबा कहाँ ते आ रहे हो? बोले तुम्हारे घर ते आ रहा हूँ, कुछ मिलो? बोले ना है। बोले चो ना मिलो? बोले तुम्हारी बहू ने मनो कर दी। अब याई पे वो सास जो है उसकी त्योरी चढ़ गई, बोले बहू ने कैसे मना करी? बोले मने करती तो मैं मने करती, वाने कैसे, मेरी बराबरी करेगी? अब घर जाके लड़ाई, अब घर जाके लड़ाई, तेने कैसे मना करी? तो बहू बोली कि सासू माँ आप रोज ही मना करती थी, मैं देखती हूँ आज आप घर पे नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं मना कर देती हूँ। बोले तू मनो करेगी, हाँ तू मेरी बराबरी करेगी अब। तो अब बहू ने क्षमा मांग ली, बोले ठीक है सासू माँ आज इसे नहीं करूँगी। तो अब बाबा सोच रहे कि इन दोनों की लड़ाई में हमारा फायदा होगा, कुछ मिल ही जाए वो। और अब बाबा खड़े वहाँ पर, अब जब इनकी लड़ाई खत्म है गई ना, तो सास आई बोली बाबा जाओ कुछ ना यहाँ पर। तो देखो अभिमान कहाँ तक है कि व्यक्ति को समझने नहीं देता है बिल्कुल। एक और क्या हुआ, एक व्यक्ति चल रहा रास्ते पर, तो दूसरा ऊपर छत पे खड़ा हुआ, तो उसने बिना देखे पान की पीक चला दी, अब वो नीचे जो चल रहा उसके सिर पे गिरी आके, तो कपड़े उपड़े खराब हो गए सब। तो उसने ऊपर देखकर कहा कि महाशय आप देखकर नहीं थूक सकते थे? हाँ नीचे हम चल रहे हैं, आप देखकर थूकते? बोले अरे हमारी गलती बता रहे हो, तुम ऊपर देखकर नहीं चल सकते थे? ये है अभिमान का स्तर, देखिए कहां तक पहुंचा है। अहंकार जब सिर चढ़ता है तो व्यक्ति को सब भूल जाता है बिल्कुल। उदाहरण दें आपको, बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं भागवत में, रामायण में, जब हनुमान जी लंका पहुंचे, रावण के सामने स्थापित प्रकट प्रस्तुत हुए जब, तो रावण ने बहुत गलत वचन कहे हनुमान जी को कि ये बंदर कहाँ से आया है, कैसे तूने बगीचा उखाड़ दिया है, कैसे राक्षसों को मार दिया, कौन है तू, तेरा नाम क्या है, ये सब बहुत सारी चीज़ें बोले। हनुमान जी चुप रहे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोले। अब क्यों नहीं बोले, समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। बोले दस से रहे इसके, पहली बात तो ये इसमें अहंकार इतना है, एक व्यक्ति के एक सर में इतना अहंकार, इसके तो दस हैं और दसों से सोच के दस का अहंकार कितना होगा। बोले इसलिए चुप रहो, चुपचाप बोलना नहीं बिल्कुल भी। तो चुप रहने का भी फायदा, अहंकारी व्यक्ति से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए बिल्कुल। एक बार क्या हुआ, ये पुरानी कथा है, इसे लगभग जब यवन वंश यहाँ पर राज्य कर रहा था, अकबर का राज्य था पूरे इस भारतवर्ष के ऊपर, तब की बात है। अकबर ने एक बार बीरबल को कहा कि हम आपके पिताजी से मिलना चाहते हैं। तो बीरबल बोले महाराज हम ही काफी हैं, पिताजी से क्यों मिले आप। तो बोले नहीं हम मिलेंगे। तो बीरबल गए घर, बोले आया कि बादशाह मिलना चाहते हैं आपसे। तो पिताजी उनके सरल व्यक्ति एकदम, बोले घबरा गए, बोले बादशाह है, क्या प्रश्न पूछेगा, पता नहीं कैसे बात करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ निकलेगा मुंह से। तो बीरबल ने कहा कि नहीं चलिए आप मिलिए। बोले नहीं हमें डर लगता है। बोले आप चुप रहिएगा बिल्कुल, बोलिएगा नहीं कुछ। बोले बाकी हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उनके पिताजी आए दरबार में, तो बादशाह ने देखा तो उनके पिताजी से बोले, बोले और सब खैरियत है। वो चुप एकदम, कुछ बोल नहीं रहे। तबीयत सब ठीक है, फिर चुप, कुछ बोल नहीं रहे। पढ़ के आए थे घर से, तो काफी प्रश्न किए, कुछ बोले नहीं, चुप। तो बादशाह बिल्कुल खींच गया, नाराज हो गया। तो बीरबल से बोला बादशाह कि ये बताओ, जो व्यक्ति चुप रहता है बिल्कुल, उसके साथ क्या करना चाहिए? हाँ, जो मूर्खों की तरह चुप रहता है उसके साथ क्या करना चाहिए? तो बीरबल बोले, बोले महाराज जो हमारे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। तो देखिए अभिमान यहां तक पहुंचता है ना, तो व्यक्ति अपने आपे से बाहर निकल जाता है। परंतु और अभिमान की स्तर देखिए, अभिमान की हाइट देखिए कहां तक पहुंचती है। हमको नाम दिया जाता है दीक्षा के समय में, अमुक दास, अमुक दास, रामदास, कृष्णदास, दामोदर दास, ये दास वो दास। परंतु जब साधक ठीक से पालन नहीं करता है इन सब चीजों का, भक्ति के नियमों का, तो ये जो षड विकार जो है ना, ये हमें घेर लेते हैं। अभिमान के कारण होता है ऐसा। तो व्यक्ति जो कृष्णदास और रामदास और ऐसे है, वो कामदास, क्रोधदास है, ईर्ष्या दास, और ये सारे दासों से घिर जाता है व्यक्ति। वास्तविकता में ये उसकी स्थिति जो है पलट जाती है पूरी तरीके से, रामदास से कामदास हो जाता है, ठीक है ना। परंतु देखिए अभिमान होना चाहिए हृदय के अंदर, इसमें कोई संशय नहीं है। अभिमान को आप हटा नहीं सकते, परंतु अभिमान को आप परिवर्तित कर सकते हो। कैसे? उदाहरण के तौर पे देखिए, रामायण के अंदर वर्णन है, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सन गाए। हनुमान जी जब 1200 किलोमीटर का समुद्र लांग के आ गए, कार्य करके आ गए, तो सबके सब राम जी के पास पहुंचे। अभिमान है उनको बहुत कि मैं राम का दास हूं। दासत्व का अभिमान होना चाहिए वास्तविकता में। तो जब आ गए तो सबसे पीछे खड़े हैं हनुमान जी, और राम जी के साथ जामवन जी की वार्तालाप हो रही है तो जामवन जी उनको सारी बात बता रहे हैं कि हनुमान जी ने ये किया, हनुमान जी ने ये किया, ऐसे गए ऐसे वापस आए। तो राम जी ने पूछा कि आप साथ गए थे क्या उनके, जो इतना बढ़िया वर्णन कर रहे हैं आप? बोले हम साथ तो नहीं गए थे, परंतु जैसा हमने उनसे प्रश्न पूछे तो उनके उसके उत्तर में जो उन्होंने बताया है हम आपको वर्णन कर रहे हैं। तो राम जी तो देखिए सर्वज्ञ परमात्मा है, सारी बात जानते हैं। तो राम जी ने सोचा कि थोड़ा हनुमान जी का टटोलें थोड़ा सा, कि इनके अंदर वास्तविकता में कहते तो हैं अपने आप को दास हैं, इनको दासत्व का अभिमान है, इनके अंदर वास्तविकता में दासत्व का अभिमान है कि नहीं, हम देखें जरा इनको, खुद देखें इनसे। तो हनुमान जी को बुलाया गया, बोले कि हम तो सुन रहे हैं आपकी इतनी प्रशंसा, इतना आपने सब कुछ किया है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में, कैसे किया आपने? हाँ, तो इतना सुंदर हनुमान जी ने वर्णन किया इस बात का, क्या कहते हैं कि नाघी सिंधु हाटकपुर जारा निश्चर गण वधि विपिन उजाड़ा। सारा जो कार्य जो कर आए हैं उसका तो वर्णन किया। सो क्या कह रहे, नाघी सिंधु हाटकपुर जारा निश्चर गण वधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई। बोले मेरे कारण नहीं है ये दासत्व का सूचक है। क्या कह रहे हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न मोरे कछु प्रभुताई। मेरे अंदर कुछ नहीं है, ये केवल और केवल आपकी कृपा के कारण है। क्यों, शाखा मृगते बड़ मनुषाई। बोले हम तो शाखा मृग हैं। शाखा मृग जानते कैसे कहते हैं, शाखा मृग कहते हैं बंदर को। शाखा ते शाखा पे जाई। बोले हम बंदर हैं, शाखा मृग हैं, एक डाल से दूसरी डाल पे जाना हमारा काम है। तो अगर हम लांग गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी बड़ी बात हो गई? राम जी बोले, बोले ज्यादा बातें मत बनाओ, 1200 किलोमीटर का समुद्र लांघना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठाकुर जी के समक्ष हनुमान जी ने बहुत सुंदर बात बोली। बोले देखिए, आपने हमें रामांकित मुद्रिका दी, ठीक है, वो आई हमारे पास, हमने मुख में धारण की और हम समुद्र कूद गए उसकी वजह से, ठीक है। वहां से जब सीता जी से मिले वहां पर उन्होंने चूड़ामणि दिया, वो हमने मुख में रख लिया, वहां से हम यहां कूद गए। बोले हम तो आप दोनों के पैर की फुटबॉल हैं, एक इधर से मारता है उधर पहुंच जाते हैं, वो उधर से मारता है इधर पहुंच जाते हैं। हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई प्रभुताई नहीं है, इस बात ये है दासत्व। वाल्मीकि में वर्णन है, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा हनुमान दैत्य संहारम मिहंता मारुतात्मज। दासो हम कौशलेन्द्रस्य, परिचय अपना क्या दे रहे हैं, देखिए मैं तो दास हूं सिर्फ और कुछ नहीं हूं इसके अलावा, करने वाले सब के सब श्री राम हैं, मैं कुछ नहीं करता हूं। और भक्तों का वास्तविकता में यही लक्षण होता है, जो अपने दासत्व में स्थित है ना वही वास्तविकता में भक्त है, बाकी सब अभक्त हैं। हनुमान जी के उदाहरण से देख लीजिए आप। तो साधक को प्रयास करना चाहिए अपने जिस भाव के अंदर स्थित हो उस भाव में अपना दासत्व जो है वो सुस्पष्ट और सुदृढ़ कर ले। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, हम सब भगवान के दास हैं ऐसा हमारे नामों के पीछे भी श्री गुरुदेव ने कृपा करके दिया है। प्रश्न ये है कि ये बताइए कि किस रस या किस भाव के दास हैं हम? दास तो हैं, किस रस के दास हैं या किस भाव के दास हैं, ये भी मालूम होना बहुत आवश्यक है। किस रस में हैं आप या किस भाव में हैं, वात्सल्य में है, साख्य में है, माधुर्य में है, किस में है, इसको ठीक से समझ लेना। वास्तविकता में आप ठीक साधन कर रहे हैं ये समझिएगा बात। रस की स्थिति समझना और भाव की स्थिति समझना, वैधि भक्ति क्या है, यही तो है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, इन इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा देना ही वास्तविकता में भक्ति है। परंतु साथ ही साथ आपकी क्या रुचि है, कृष्ण के साथ गोप सखाओं की लीला सुनकर आनंद आता है या फिर गोप रमणियों के साथ जो कृष्ण की लीला हुई है उसको सुनकर आनंद आता है, या वात्सल्यमयी यशोदा मैया का चरित्र सुनकर आनंद आता है, या फिर जितने दास्य भाव के नंद सुनंद इत्यादि जितने भी ये भक्त हैं इनका चरित्र सुन के आनंद आता है। जब आप इस स्थिति में चिंतन करेंगे और श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का मनन करेंगे, वर्णन मनन करेंगे, अपने विचार करेंगे, तब आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आना शुरू होगी कि हम वास्तविकता में किस रस के अंदर स्थित हैं। तो आगे बढ़ने का जो स्कोप है और बढ़ जाता है। इसलिए कृष्ण लीलाएं जितनी जिसको जिसके अनुसार अनुकूल लगे उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। बहुत भक्त ऐसे होते हैं जिनको माधुर्यमयी लीलाएं बहुत सुंदर लगती हैं, गोपांगनाओं के साथ जो कृष्ण की लीलाएं हैं, गोपी जा रही है मटका लिए दूध को, अब कन्हैया पीछे से आ रहे हैं, इतनो वर्णन किया है साधुओं ने, मायरी मेरे श्याम लग्यो ई संग डोले। गोपी जो है चल रही है मटका लेकर और ठाकुर जी पीछे पीछे, श्याम लग्यो ई संग डोले, साथ में चलते हैं हमेशा और क्या कह रहे हैं, मायरी मेरे श्याम लग्योई संग डोले, श्याम लग्योई संग डोले, श्याम लग्योई संग डोले, जित जाऊं उत आड़ो ही आवे। बोले मैं जहां जाती हूं वहीं सामने आके खड़ा हो जाता है और क्या करता है, जित जाऊत आड़ो ही आवे, बिना बुलाए मोते बोले, मैं बोलना नहीं चाहती हूं फिर भी मुझसे बातचीत करता, ये है परमानंद दास को ठाकुर, हंसी हंसी घूंघट खोले, श्याम लग्योई संग डोले। आएगा और एकदम तुरंत घूंघट खोल देगा। अब ऐसी लीलाएं आप सुनोगे, माधुर्यमयी लीलाएं हैं, किसको आनंद नहीं आएगा बताइए, आपका चित्त रमण करने लग जाएगा श्री कृष्ण में। ये है तरीका। अब पहले तो अपने रस में स्थित हो जाइए और पहले ढूंढिए अपना आपका रस है क्या, और वैसी ही लीलाओं का चिंतन कीजिए और वैसा ही संग कीजिए, ये कृष्ण ना हृदय के अंदर आके बैठ के लग जाए, देखिए निश्चित रूप से। और हरिनाम जप के द्वारा जब आप जप करें तो ये सब चीजें स्मरण करके देखिए, निश्चित रूप से अनुभव होना शुरू हो जाएगा। एक महात्मा तो कह रहे हैं इस बात को, भागवत की पद्धति बता रहा हूं आपको, नारद मुनि ने जब ध्रुव महाराज मिले तो उनको पूरे भगवान के श्री अंग का वर्णन किया है कि ठाकुर जी ऐसे देखने में है, नीलकांति है और पीताम्बर धारण करते हैं, ऐसे कुंडल धारण करते हैं, ये भागवत की विधि है ना पूरी। तो ये क्या है, भगवान के श्री अंग का स्मरण है। एक महात्मा बता रहे थे बहुत अच्छी बात, बोले अगर कोई व्यक्ति हरिनाम के साथ साथ ये जो श्रीअंग का जो वर्णन है इसका अगर चिंतन करना शुरू करे ना ईमानदारी से, ईमानदारी से अगर चिंतन करे, 6 महीना के अंदर व्यक्ति को अनुभूति हो जाएगी, 6 महीना के अंदर अगर करे तो सही, लेकिन ईमानदारी से। जैसा वर्णन किया है भागवत के अंदर, अगर आप वैसा करना शुरू करें, किसको अनुभूति नहीं चाहिए बताइए? किसी को नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो करके देख लो, करके देख लो। यही विधि भक्ति के अंदर ही है सारी चीजें, करके देखो और आनंद लो। वही श्री कृष्ण जब हृदय के अंदर आ जाएंगे, जैसे ध्रुव महाराज के हृदय में आ गए ना परमात्मा स्वरूप, पूरा जगत जो है शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, ऐसा हो जाता है व्यक्ति के लिए। कुछ नहीं पता उसको, इतना पुलक अश्रु हृदय से आंखों से निकल रहा है कि भगवान सामने आके खड़े हो गए गरुड़ पर, परंतु ध्रुव महाराज आंख नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतना आनंद आ रहा है हृदय में कि उस आनंद का वर्णन वाणी का विषय नहीं है। भगवान को जानबूझकर आग्रह पूर्वक उस अंतरहित जो हृदय के अंदर जो परमात्मा स्वरूप है उसको तिरोहित करना करना पड़ा उनको, ताकि भैया मैं आया हूं सामने, आंख खोल के देख तो ले। तो इस प्रकार से जब जो भी रस की लीलाएं हैं, जिस प्रकार से चाहे सखा भाव में हो, चाहे माधुर्य में हो, दास्य में हो, वात्सल्य में हो, अपने रस को समझकर भजन करेंगे तो निश्चित रूप से अनुभव होना शुरू हो जाएगा, और अनुभव व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक संतुष्ट करके रखता है। कोई भी साधक, एक बात और समझ लीजिए ध्यान से, जिस व्यक्ति को अनुभव नहीं हुआ, चाहे कितना हो हरिनाम कर रहा हो, भगवत धाम वापस नहीं जाएगा। बिना अनुभूति के भगवत धाम वापस नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अनुभव कंपलसरी है, भागवत भी कह रही है इस बात को। जिस व्यक्ति को अनुभव हो जाता है ना, उसको इतना आनंद रहता है हृदय के अंदर, उसके लिए ये जगत ही गोलोक वृंदावन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जित देखूं तित श्याम मई है, जहां देखोगे आपके पृष्ठ नजर आएंगे। और किसी से किसी बात का कोई विरोधाभास भी नहीं होगा। निज प्रभु मय देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। किससे विरोध करेंगे आप जब आपको सब में अपने श्री कृष्ण नजर आने लग जाएंगे, श्रीमती राधा रानी नजर आने लग जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।